यह प्रवचन श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रीला अद्वैत आचार्य के प्राकट्य दिवस पर 26 जनवरी 2015 को इस्कॉन गुरुग्राम में दिया गया।
गोपी जाना बाला भाला धारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण।
आप जानते हो कि आज एक बड़ा शुभ दिन है? नहीं जानते? कितने भक्त जानते हैं आज शुभ दिन है? क्या है? रिपब्लिक डे। हाँ हाँ, अद्वैताचार्य का आविर्भाव थी अपीयरेंस डे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञातिमिनन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलक्य चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिव श्री गो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप में कितने भक्त हो जो कि पहली बार आ रहे हैं इस प्रोग्राम में? पहली बार? और पिछले साल आप में कौन कौन आए थे इस प्रोग्राम में? तो सबसे पहले मैं वेद व्यास प्रभु का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि हर साल वो प्रयास करते हैं आप लोगों को, आप लोगों की सेवा करने के लिए हर साल इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। और आप सबको अच्छा लगता है ये प्रोग्राम? आपने सुना होगा कि भक्तों ने निवेदन किया था, क्या अपना नाम और पता जरूर दीजिए। आप में से कितने भक्तों ने वो डेटा फॉर्म भरा है? सबसे निवेदन है सारे भक्त जो आए हैं अपना नाम और पता जरूर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि भक्तों का संबंध आपसे रहे और इस प्रकार आपको सूचना दे सकेंगे। तो जैसे आपने कहा आज बड़ा शुभ दिन है, आज अद्वैताचार्य का आविर्भाव तिथि है या पेरेंट्स डे या जन्मदिन। तो संक्षेप में पहले हम अद्वैताचार्य की थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर चैतन्य चरितमृता का एक श्लोक पढ़ेंगे जिसमें कहा गया है कि आप भगवान के शरणागत होने के लिए क्या भाव होना चाहिए। आप ऐसे कितने भक्त हो जो कि भगवान के शरणागत होना चाहते हो? सब, ये तो शुद्ध भक्तों की सभा है। तो आप जानना चाहते हो क्या लक्षण होने चाहिए? अच्छा ठीक है। तो चैतन्य चरितमृता की रचना कृष्णदास कविराज जी ने की है और चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे आनिया। यही राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में कहा गया है पतित पवन हेतु तव अवतारा। आप अवतारित हुए हो पतितों का उद्धार करने के लिए। आप सब पतित हो या नहीं? क्या आप सोचते हो हम पतित थोड़ी हैं? हम तो ब्राह्मण खानदान में हमारा जन्म हुआ है, पति तो ये विदेशी लोग हैं। पतित हैं? नहीं, हम सब पतित हैं। तो चैतन्य चरितमृता में चैतन्य महाप्रभु उनके साथियों की लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो जो मैं श्लोक आपको पढ़ के सुनाऊंगा ये है चैतन्य चरितमृता से, और मेरे सामने अंग्रेजी की किताब है तो मैं उनका हिंदी में अनुवाद कर दूंगा। चैतन्य चरितमृता आदि लीला के 13वें अध्याय में कहा गया है, अद्वैताचार्य के घर में सारे वैष्णव बैठते थे और सदा कृष्णा का नाम लेते थे, कृष्णा की पूजा करते थे और महामंत्र का जाप करते थे। पर अद्वैताचार्य जो हैं उनके हृदय में अत्यंत दुख था ये देखकर कि भौतिक समाज के लोग, कि भौतिकवादी लोग इंद्रिया तृप्ति के मार्ग में जुड़ रहे हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान का जो प्रमाणिक भक्त है वो जब देखता है बद जीवों को भौतिक कार्यों में जुड़े हुए तो वो बड़ा दुखी होता है। और भक्ति सिद्धांता जी कहते थे कि इस विश्व में अगर किसी चीज की कमी है तो एक ही विषय, वो क्या है, भगवत प्रेम। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं वो चाहते हैं कि सबका उद्धार हो। तो अद्वैताचार्य कौन है? अद्वैताचार्य भगवान के अवतार हैं, महाविष्णु और सदाशिव। भगवान के अवतारों का वर्णन आप शास्त्रों में प्राप्त करते हो। शास्त्र का अर्थ है भगवान की वाणी। आज के वातावरण में कई व्यक्ति दावा करते हो भगवान हैं, और कई भगवान तो जेल में बैठे हैं, और कई भगवानों के विषय में सुनने में आता है जेल में जाने वाले हैं। पर जो असली भगवान है, अवतार है, वो वैकुंठ धाम से प्रकट होता है और उनका वर्णन आप शास्त्र में प्राप्त करते हो। तो हमारी संस्था में हमारे जो वैष्णव भक्त हैं उन्हीं को भगवान मानते हैं जिनका वर्णन शास्त्र में है। ये नहीं कि हमने कुछ चमत्कार दिखा दिया और हम भगवान बन गए। तो अद्वैताचार्य प्रकट हुए थे महाप्रभु जी से पहले, वो लगभग 50 या 55 साल के थे जबकि महाप्रभु प्रकट हुए। इसलिए जब आप पंच तत्व की तस्वीर देखते हो, आपने देखा होगा कि एक अद्वैताचार्य के मुंह में सफेद दाढ़ी है ना। तो दाढ़ी क्यों है? क्योंकि वो उम्र में महाप्रभु से 50 या 55 साल बड़े थे। तो अद्वैता उनका नाम कहा गया है क्योंकि उनके नाम में उनमें कोई अंतर नहीं, भगवान उनमें कोई अंतर नहीं। आचार्य मतलब वो अपने उदाहरण से शिक्षा देता है, आदर्श भक्त है। ये नहीं हम आपको कहें ये करो ये करो, खुद हम गलत करें। एक समय एक माता अपने बेटे को ले गई थी गुरुजी के पास। माता ने गुरुजी से कहा मेरे बेटे को बहुत ऊंची डायबिटीज है, वो चीनी खाते रहता है, रसगुल्ले गुलाब जामुन बर्फी, इसको आदेश दो मीठा नहीं खाए नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो गुरुजी ने कहा 2 हफ्ते बाद आना फिर मैं इसको कहूंगा। तो 2 हफ्ते बाद माता गई बेटे के साथ और गुरुजी ने कहा बेटा मीठा मत खाओ, स्वास्थ्य के लिए डायबिटीज के लिए अच्छा नहीं है। और बेटे ने कहा ओके गुरुजी मैं मीठा नहीं खाऊंगा आज से। तो माँ बड़ी खुश हुई। तो माँ ने कहा क्या आपने ये 2 हफ्ते पहले क्यों नहीं कहा, जब आपने यही कहना था कि मीठा मत खाओ तो उसे 2 हफ्ते पहले कह देते। तो गुरुजी ने कहा 2 हफ्ते पहले मैं भी मीठा खा रहा था तो मैं उसे कैसे कहता मीठा छोड़ दो। अब मैंने मीठा छोड़ दिया है तो मैं उसे कह सकता हूँ मीठा छोड़ दो। तो ये है अद्वैत आचार्य, आदर्श भक्त। भगवान के जो भक्त हैं वो अपने उदाहरण के द्वारा धर्म की शिक्षा को प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए इनका नाम था अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य जब उनकी माँ, पिता का नाम था कुबेरा पंडित, उनकी माँ को सपना आया था कि उनके घर में महाविष्णु और सदाशिव दोनों जन्म लेंगे। वो प्रकट हुए अद्वैत आचार्य के रूप में। छोटी आयु में ही वो केवल कृष्णा का नाम लेते थे। जब वो पैदा भी हुए थे उन्होंने श्री कृष्णा चैतन्य कहा था, तो लोगों की बोली को समझ नहीं सके। बचपन से ही उनकी रुचि थी कृष्ण भगवान की सेवा में। एक समय उन्हें ले गए थे दुर्गा जी के मंदिर में, तो एक राजा का बेटा साथ में गया था, पर अद्वैत आचार्य छोटे से थे, 7-8 साल के, उन्होंने प्रणाम नहीं किया। उन्होंने ये स्थापित किया कि भक्ति होनी चाहिए कृष्ण भगवान की। तो अद्वैत आचार्य हरि नाम में जुड़े हुए थे, दिन रात हरि नाम का उच्चारण करते थे। उनके माता पिता के इनके चार भाई हुए थे पहले, और जब माता पिता का देहांत हुआ तो इन्हें श्रद्धा उत्सव में हरिदास ठाकुर को भंडारा खिलाया। अक्सर रिवाज यह है कि ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन खिलाते हो, है ना, श्रद्धा क्या श्राद्ध के समय, श्राद्ध के समय उन्होंने हरिदास ठाकुर को खिलाया। हरिदास खिलाने से पहले हरिदास ने कहा, मुझे खिला रहे हो, ब्राह्मणों को खिलाओ, मैं तो नीचा व्यक्ति हूं, मेरा जन्म हुआ है मुसलमान खानदान में, मुझे खिलाओगे श्राद्ध के समय तो तुम्हारा समाज में स्थान समाप्त हो जाएगा, सब आपके ऊपर हंसेंगे। हरिदास ठाकुर कौन थे? वैसे तो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, पर प्रकट हुए थे एक मुसलमान खानदान में। ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि उनका जन्म ऐसे वातावरण में हो जहाँ की बड़ी विनम्रता के साथ वो भगवान की सेवा कर सके। ये लीला 10वें स्कंद में प्रकट होती, प्राप्त होती है। और जब ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वालों को, बछड़ों को, गायों बछड़ों को चुरा लिया था, पर भगवान समझ गए थे ये ब्रह्मा जी की शरारत है। भगवान ने अपना विस्तार किया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने विस्तार कर लिया है अनेक ग्वालों और बछड़ों के रूप में, तो उन्होंने स्वीकार किया, क्या कृष्णाति भगवान स्वयं ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्वकर्ण कर्ण, अनेक ईश्वर हैं वे की परम भगवान है। जैसे इंद्र देवता ने भगवान की परीक्षा ली, तेजी के साथ बारिश बरसने लगी, तो जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया बाएं हाथ के छोटे उंगली के नाखून के बल पर, तो इंद्र ने स्वीकार किया कि कृष्ण भगवान परम भगवान है। तो ब्रह्मा जी की इच्छा प्रार्थना थी कि उन्हें ऐसे वातावरण में जन्म हो प्राप्त हो जहाँ की बड़ी विनम्रता से वो भगवान की सेवा कर सके, क्योंकि ब्रह्मा जी के रूप में कभी कभी अधिक अभिमान भी आ जाता है। तो उनका जन्म हुआ एक मासूम मुसलमान खानदान में, तो उनका आकर्षण किसके प्रति था? हरि नाम के प्रति। दिन में रोज 300,000 बार हरि नाम का जाप करते थे। एक समय एक वहां के काजी ने, काजी को कहा जाता जो कि मस्जिद का अधिकारी था, एक वैश्य को भेजा था हरिदास को आकर्षित करने के लिए। ये वैश्य जो थी सबसे खूबसूरत वैश्य थी, क्योंकि हरिदास को दूर दूर से लोग आते थे दर्शन लेने के लिए। और काजी के हृदय में ईर्ष्या थी, मुझे लोग मिलने नहीं आते और इस हरिदास को मिलने आते हैं, तो मैं समाज में दिखाऊंगा ये ढोंगी व्यक्ति है। तो वैश्य ने कहा घबराओ मत, दो दिन में हमारा रिश्ता हो जाएगा। तो वैश्य आई, हरिदास उसी दिन उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाने वाले थे। तो वो वैश्य आई बुरी नीयत के साथ, हरिदास ने क्या सोचा, मुझे इसका उद्धार करने दो। ये होता है भक्त का भाव, चाहे कोई किसी भाव से आए, भक्त का भाव होता है मुझे उसका उद्धार करने दो, मुझे उसे शिक्षा देने दो। तो वैश्य आई हरिदास के दरवाजे पर बैठी, हरिदास ने कहा आज मेरा माला समाप्त नहीं हुआ, कल आना, कल रात को मैं तुम्हें जरूर संतुष्ट करूंगा। पर उस वैश्य ने बड़े ध्यान से सुना हरि नाम का उच्चारण एक शुद्ध भक्त के द्वारा। अगले दिन आई, हरिदास ने फिर यही कहा मैंने अभी तक मेरा जाप समाप्त नहीं किया, कल जरूर तुम्हें संतुष्ट करूंगा। वो तीसरे दिन जब वो आई, उसका हृदय इतना पिघल गया था हरि नाम का उच्चारण सुनकर और हरि नाम का उच्चारण करके, कि उसने स्वीकार किया कि मुझे भेजा था किसी ने तुम्हें फंसाने के लिए। और फिर ये वैश्य भक्त बन गई, बहुत ऊंचे कोटि की भक्त, उसने सारा जो संपत्ति थी दान में दे दी और हरि नाम का जाप शुरू कर दिया। तो हरिदास ठाकुर, क्योंकि उनका जन्म हुआ था मुसलमान खानदान में, उन दिनों में भारतीय समाज में बड़े कड़क नियम थे, अगर आपने किसी मुसलमान के घर में खा लिया तो मुस्लिम बन गए, अगर आपने किसी मुसलमान के पास नौकरी कर ली तो भी हिंदू समाज के आप बाहर हो गए। जैसे रूप और सनातन, वो बड़े उत्तम कोटि के भक्त थे, पर क्योंकि उन्होंने मुसलमान राजा के पास नौकरी की थी, वो कभी जगन्नाथपुरी मंदिर में भी नहीं गए दर्शन के लिए। अगर किसी मुसलमान ने अपने बाल्टी से पानी फेंक दिया आप पर, मुसलमान बन गए। एक भक्त थे जिनका नाम था सुबुद्धि रॉय। तो सुबुद्धि रॉय एक समय बहुत बड़ा जमींदार था और उसका एक नौकर था जिसका नाम था हुसैन शाह। हुसैन शाह ने एक गलती की थी जिसके कारण सुबुद्धि रॉय ने प्रेम से मारा और एक निशानी रह निशाना बन गया उनकी पीठ पर। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा, ओ ये लकीर का निशाना पीठ में। उसने पूछा पति से ये निशाना कैसे आया। तो पति ने कहा जब मैं छोटा था, मैं सुबुद्धि रॉय के पास नौकरी कर रहा था, मैंने गलती की, उसने मुझे मारा था प्रेम से, इसके ये निशाना रह गया। पति ने कहा अब तो तुम राजा बन गए, चापलूसी करके नौकर मालिक बन गया, अब तो तुम राजा बन गए, बड़े जमींदार बन गए हो, मार दो इस सुबुद्धि रॉय को, बदला दो। क्या हिम्मत इसकी। हुसैन शाह ने कहा मैं कैसे मारूं, उसने मुझे इतने प्रेम से पाला था, मैं नहीं मार सकता उसे, मार नहीं सकते, कम से कम उसे मुसलमान तो बना दो। तो हुसैन शाह ने सुबुद्धि रॉय को बुलाकर अपनी बाल्टी से पूरा पानी उन पर फेंक दिया, पानी फेंका, मुसलमान बन गए। तो पूरे समाज ने कहा अब तुम हमारे घर नहीं आ सकते, घर वालों ने कहा अब तो तुम घर में नहीं आ सकते, अब तो तुम मुसलमान बन गए। तो सुबुद्धि रॉय तो एक रूप से खुश था, अभी सब बंधन से मुक्त हो गया है तो भजन कर सकता है। सुबुद्धि रॉय कई ब्राह्मणों के पास गए, अब इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मैं मुसलमान बन गया हूँ, क्या करना चाहिए। कई सब ने कहा उबलते हुए घी को पीकर आत्महत्या कर लो, ये सबसे बेहतर है। फिर सुबोधि रॉय गए चैतन्य महाप्रभु के पास, मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरे कृष्ण का उच्चारण करो और हरे कृष्ण का प्रचार करो। फिर सुबोधि रॉय ने हरि नाम किया, वृंदावन में आए। वृंदावन में जब आए, छोटा सा उन्होंने लकड़ी का धंधा किया था जिसमें दो पैसा आमदन होती थी पूरे महीने में। आप में से किसकी आमदन है दो पैसा महीना? दो पैसे महीने। वो दो पैसे में से एक पैसा खर्चते थे बंगाली विद्वान के देखभाल में, भक्तों के देखभाल में। तो प्राचीन समय में बड़ा ऐसा कड़क रिवाज था। तो अद्वैताचार्य ने हरिदास ठाकुर को भोजन खिलाया। हरिदास ने कहा मुझे भोजन मत खिलाओ, हमारा स्थान समाज में स्थान बिगड़ जाएगा। तो अद्वैताचार्य ने क्या कहा, आपको भोजन खिलाना करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के बराबर है। हरिदास ठाकुर भगवान के शुद्ध भक्त। तो अद्वैताचार्य के घर में जैसे यहाँ कहा गया है, सारे वैष्णव भक्त बैठे थे, हरि नाम कर रहे थे, हरि नाम में आनंद आ रहा था। अद्वैताचार्य प्रकट हुए, उन्होंने हरि नाम का उच्चारण शुरू किया। जैसे मैंने कहा कि वो पैदा ही हुए थे, उनकी जीभ से श्री कृष्ण चैतन्य निकला था। और अद्वैताचार्य नवदे में थे, फिर उनके जब छोटे थे उनके माँ बाप आ गए थे शांतिपुर। तो अद्वैताचार्य के मन, अद्वैताचार्य थे महाविष्णु के अवतार, भगवान के अवतार। यहाँ आप देख रहे हो कि भगवान के अवतार चिंता में हैं पतितों का उद्धार कैसे होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं जो व्यक्ति पतितों को उद्धार में सहयोग देता है प्रचार के माध्यम से, वो मेरा प्रिय भक्त बन जाता है। तो अद्वैताचार्य ने देखा समाज में, समाज का वातावरण बहुत बिगड़ गया है, सब नाम के धर्म धार्मिक हैं और सब गलत कामों में जुड़े हुए हैं। और अद्वैताचार्य अकेले नहीं थे, उनके साथ ही थे हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य दोनों के मन में यही चिंता थी। तो भगवान के जो भक्त हैं वो केवल अपना उद्धार नहीं करना चाहते हैं और दूसरों का उद्धार भी करना चाहते हैं। तो आगे अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर ने जब देखा समाज की स्थिति, तो वो क्या सोचने लगे, कैसे इन पतितों का उद्धार होगा। जैसे आप अपने घर में अगर देखते हो कि आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं, गलत कार्य में जुड़ रहे हैं, तो आप सोचते हो ना उनका उद्धार कैसे किया जाए, कैसे उनको सुधारा जाए। तो वैष्णव भक्त के लिए पूरा समाज उनकी संतान है, आपके लिए आपकी संतान है, आपका बेटा बेटी, और भगवान के भक्त के लिए पूरा समाज संतान है, पशु भी संतान है। इसलिए जो वैष्णव भक्त हैं वो पशु को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। तो हरिदास ठाकुर ने जब देखा कि समाज की स्थिति इतनी बिगड़ गई है, तो वो सोचने लगे अब कैसे इन पतितों का उद्धार होगा। और उन्होंने ये निर्णय किया कि ये केवल परम भगवान ही इनका उद्धार कर सकते हैं। हालांकि महाविष्णु भगवान हैं, अद्वैताचार्य भगवान के अवतार हैं, पर वो चाहते थे कि कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट हो पृथ्वी पर। भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, यदा यदा ही धर्म से राम यहां, अलग अलग समय में मैं प्रकट होता हूँ। भगवान क्यों प्रकट होते हैं, किस लिए? गीता में भगवान क्या कहते हैं, प्राणितनाया विनाश धर्म संस्थाया संभव। भगवान प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। आप समाज में देखते हो अनेक व्यक्ति धर्म ये दावा करते कि वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। फिर ध्यान से देखोगे तो देखोगे जो उपदेश दिया जा रहा है ये शास्त्र पर निर्भर नहीं है, शास्त्र से बिल्कुल स्वतंत्र है। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है धर्मांति साक्षात भगवत परिणाम। धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी। और रूप गोस्वामी जी कहते हैं श्रुति श्रुति प्राण आदि पंचरात्म विधि मिना एकांत की हरि भक्ति है वह कल्पद है। कि जो शिक्षा शास्त्र पर निर्भर नहीं है उसके पालन से केवल समाज में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो अद्वैत आचार्य सोचने लगे कि अभी भगवान ही इन पतितों का उद्धार कर सकते हैं, मैं इनका उद्धार नहीं कर सकता। और क्या कर रहे थे, परम भगवान की पूजा कर रहे थे। तो अद्वैत आचार्य और उनके साथ ही हरिदास ठाकुर दोनों मिलकर भगवान की पूजा कर रहे थे और ये प्रार्थना कर रहे थे भगवान आप स्वयं प्रकट हो। तो चेतन हरिदास आचार्य और हरिदास ठाकुर क्या कर रहे थे, शांतिपुर में आ गए। अद्वैत आचार्य के पास एक शारक नाम शीला था, ये शीला का दर्शन आप आज भी प्राप्त कर सकते हो। आपको पता है कहाँ, कहाँ, शांतिपुर में, जहाँ की बड़ा सुंदर मंदिर है, जहाँ की अद्वैत आचार्य की शारक नाम शीला की पूजा की जा रही है। अद्वैत आचार्य ने भगवत गीता में पढ़ा था पत्रम पुष्प फलम तो अभियो में भक्ति प्रयोजन। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति के साथ मुझे एक तुलसी का पत्ता भी अर्पण करेगा तो मैं उसे क्या करूंगा, स्वीकार कर लूंगा। तो अद्वैत आचार्य ने कहां पढ़ा था, गीता में। तो अद्वैत आचार्य की इच्छा थी कि भगवान स्वयं प्रकट हो और इसलिए वो जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जोर जोर से महामंत्र का जाप कर रहे थे, साथ में शारग्राम की पूजा। शारग्राम की पूजा कैसे कर रहे थे, तुलसी के पत्ते के साथ चंदन और गंगा जल। और हरिराज ठाकुर दोनों का एक ही भाव था कि पतितों का उद्धार करने के लिए परम भगवान को प्रकट होना पड़ेगा, हमारे बस का काम नहीं है। अरे महाचार्य चाहते तो खुद कर सकते थे, तो वो चाहते थे कि भगवान स्वयं प्रकट हो। आगे कहा गया है चैतन्य चतुर्मृत में कि अद्वैताचार्य का और कोई धंधा नहीं था, एक ही था हरि नाम का उच्चारण। पूछते हैं ना लोग क्या है तुम्हारा धंधा, क्या व्यापार है, अब कहो कि हमारा धंधा भक्ति करना। तो अद्वैताचार्य और हरिदास जोर जोर से पुकारते थे और फिर कौन प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु जी के रूप। और अद्वैताचार्य क्या क्या कर रहे थे, लोगों को हरि नाम की महिमा दे रहे थे और भगवत गीता और श्रीमद भगवत का उपदेश दे रहे थे जिसका निर्णय है भक्ति हो। जैसे आप जानते हो अनेक लोगों अनेक व्यक्तियों ने गीता का अनुवाद किया है, पर आप देखोगे कि इन व्यक्तियों ने या अनुवादकों ने जो असली भाव है उसको छुपा दिया है। प्रभुपाद जी भूमिका में कहते हैं, गीता की भूमिका में, कि एक अमेरिकन औरत ने उनसे पूछा स्वामी जी मुझे कौन सी गीता मुझे पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कि मैं उसे ठीक उत्तर नहीं दे पाया क्योंकि जितने अनुवाद प्रभुपाद जी ने देखे थे सब में अनुवादक ने अपना भावार्थ जोड़ा है। पर गीता का निर्णय क्या है, भक्ति माम अभिजानति, सर्वधर्मा परित्यज्य में क्या है, भक्ति का भाव। गीता का निर्णय है कि भक्ति योग एक साधन है जिसके द्वारा आप भगवान को समझ सकते हो। श्रीमद भगवतम का निर्णय क्या है, आप में से कितने भक्त जो श्रीमद् भगवतम से परिचित हो और कितने भक्त जो भगवतम को बकायदा पढ़ते हो। तो श्रीमद् भगवतम का निर्णय क्या है? भक्ति योग है कि नहीं? तो यही उपदेश अद्वैताचार्य दे रहे थे समाज की प्रजा को, वो है भक्ति योग। इसलिए जब प्रभुपाद जी ने गीता प्रकाशित की, उन्होंने भगवत गीता यथारूप के नाम से प्रकाशित की, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भगवान के असली भाव को प्रस्तुत किया है। तो अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर जोर जोर से पुकार कर हरि का नाम ले रहे थे, और फिर कौन प्रकट हुए? चैतन्य महाप्रभु, गौरांगा गौरांगा गौरांगा। फिर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। माता का नाम क्या था? सची देवी। पिता का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्रा। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए, जैसे मैं अद्वैताचार्य की आयु थी लगभग 5500, बचपन में अद्वैताचार्य ने जो बाल लीला प्रकट की सब कृष्णा से संबंधित थी। हरि का नाम लिया, गीता भागवत का उपदेश दिया, और जब भी उनकी प्रार्थना ये थी, कृष्ण भगवान आप स्वयं प्रकट हो। और राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उनके अनेक नाम थे। एक था निमाई, क्योंकि नीम के वृक्ष के नीचे जन्म हुआ था। एक था गौर हरि, गौर सुंदर, गौरांग। तो महाप्रभु निमाई ने माता के स्तन से दूध पीना इनकार कर दिया। तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता चिंता में थी, बेटा भी पैदा हुआ है दूध ही नहीं पी रहा। समाज के सब पंडितों को बुलाया, सबकी राय ली, क्या कारण है मेरा बेटा दूध ही नहीं पी रहा, माता के स्तन से दूध नहीं पी रहा। फिर उन्होंने अद्वैताचार्य को बुलाया। अद्वैताचार्य उस समय शांतिपुर में निवास कर रहे थे। आप में से कितने भक्त शांतिपुर गए हो? तो शांतिपुर मायापुर से कोई 1.5-2 घंटा दूर है, 1.5 घंटा दूर की दूरी पर है। तो अद्वैताचार्य उनकी पति पत्नी सीता देवी को बुलाया। अद्वैताचार्य ने कहा, आपका बेटा इसलिए आपके स्तन से दूध नहीं पी रहा क्योंकि वो केवल प्रसाद खाना चाहता है, और आपने दीक्षा नहीं ली। दीक्षा लो, फिर आपका बेटा दूध पीना शुरू कर दे। तो फिर अद्वैताचार्य ने जगन्नाथ मिश्र और सची माता दोनों को दीक्षा दे दी, और दीक्षा देने के बाद निमाई ने दूध पीना शुरू कर दिया। तो निमाई शुरू में बड़े शरारती थे, फिर उन्होंने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया। पहले तो छोटी आयु में संस्कृत के बड़े विद्वान बन गए थे। उस समय एक बड़े विद्वान थे जिनका नाम था केशव कश्मीरी। उन्होंने उस समय के सारे पंडितों को हरा दिया था। केशव कश्मीरी को पता था कि नवद्वीप में सारे संस्कृत के विद्वान हैं। प्राचीन समय में नवद्वीप भारत का सबसे धनी शहर था। सारे संस्कृत के विद्वान पंडित वहां निवास कर रहे थे। नवद्वीप का बड़ा ऊंचा नाम था इस पृथ्वी पर। तो केशव कश्मीरी जो पंडित था, उसे पता था कि नवद्वीप में सारे पंडित हैं, बड़े विद्वान हैं। तो उन्होंने सूचना भेजी, मैं आपके शहर में आकर आप भक्तों से चर्चा करना चाहता हूँ, डिबेट करना चाहता हूँ। तो कश्मीर के पंडितों, कश्मीर माफ करना, नवद्वीप के पंडितों ने एक सभा बुलाई और कहा, केशव कश्मीरी हमारे साथ आकर डिबेट करना चाहता है, हम ऐसे कौन उसके सामने खड़ा होगा? सारे पंडित ने कहा, हम तो नहीं जाएंगे। उसका नाम सुनते ही पंडित घबरा जाते थे, हम नहीं जाएंगे। तो एक पंडित ने कहा, निमाई पंडित को हम आगे कर देंगे। ये निमाई पंडे छोटी आयु में बड़े प्रसिद्ध विद्वान बन गए थे, उनका बड़ा ऊंचा नाम था। अगर तो केशव केशवी ने निमाई पंडित को हरा दिया संस्कृत के डिबेट में, तो हम कहेंगे हमारे शहर के बच्चे को हराया, हमें थोड़ी हराया। और अगर किसी कारण निमाई पंडित उनको हरा देगा, तो हम कहेंगे अगर हमारे शहर का बच्चा हरा सकता है तो हमारी तो बात ही छोड़ो। तो निमाई पंडित का एक महाविद्यालय था गंगा के तट पर, वहाँ वो संस्कृत सिखा रहे थे। तो कश्मीरी बहन बाजा झंडा लेकर, जैसे आज के राजनीतिक नेता जब भाषण देने जाते हैं तो ट्रकों में उनके चमचे आ जाते हैं ना। और एक, एक थोड़ी देर के लिए एक स्थान में रहेंगे, फिर दूसरे स्थान में चल जाएंगे, सबको जय बोलेंगे, जो पैसा दे उनकी जय हो जाती है। तो केशव कश्मीरी बड़ा घमंडी पंडित था, विद्वान था, सरस्वती देवी का भक्त। तो केशव कश्मीरी आया, पूछा आप ही हो निमाई पंडित? निमाई पंडित ने कहा हाँ मैं ही हूँ। तो आप ही हो विद्वान जिनके विषय में मैंने सूचना प्राप्त की है? निमाई पंडित ने कहा मैं तो मूर्ख हूं, आपकी तुलना में मैं तो कुछ भी नहीं हूं। आखिर महाप्रभु ने विनम्रता का संदेश दिया था हमें। तो निमाई के निवेदन पर केशव कश्मीरी ने 100 श्लोकों की रचना की, जिसमें गंगा नदी की प्रशंसा हो रही थी। और फिर पूछा निमाई से, हाँ कैसे लगा मेरी रचना? निमाई ने कहा बहुत सुंदर, पर इन इन श्लोकों में ये कमी थी। और सारे 100 श्लोक निमाई ने सुनकर वापस सुना दिए। एक बार सुनने में ही कंठस हो गया था। जो व्यक्ति एक बार सुनने में कंठस कर दे उसे श्रुति धारा कहा जाता है। जैसे जब सुखदेव गोस्वामी भागवतम का उपदेश दे रहे थे तो सभा में हजारों संत थे, जिनमें एक थे सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी ने एक बार सुनने से ही 18,000 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया। आप कर सकते हो? नहीं, आप श्रुति धारा नहीं हो। तो जब निमाई ने वो 100 श्लोकों को फिर वापस सुना दिया, केशव कश्मीरी आश्चर्यचकित हो गया था। उसने कहा मैंने तो वायु की तेजी से सुनाए थे ये श्लोक, तुमने एक बार सुनने में कैसे कंठस्थ कर लिया? तो निमाई ने जब उनकी कमियों को सुनाया, केशव कश्मीरी बोल नहीं पाया, उत्तर नहीं दे पाया। तो केशव कश्मीरी के जो विद्यार्थी थे निमाई के, वो हंसने लगे केशव कश्मीरी पर। और केशव निमाई पंडित ने रोक दिया, कहा कि हंसो मत, ये थका हुआ है, कल जवाब देगा। तो फिर ये है वैष्णव का भाव, किसी की बेइज्जती नहीं करता, सबका सहयोग देता है। तो निमाई ने देखा कि उसके विद्यार्थी केशव कश्मीरी की हंसी उड़ा रहे हैं, उन्होंने एकदम रोक दिया। तो शाम को जब केशव कश्मीरी घर गया, वैसे प्रार्थना की सरस्वती से, सरस्वती को कहा, सरस्वती देवी उससे कहा आप हमेशा आपने मेरी सुरक्षा की, पर आज आपने कुछ सहयोग ही नहीं दिया मेरा, मैं निमाई के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। तो सरस्वती देवी ने कहा ये लड़का निमाई स्वयं भगवान है, तो हम उनके सामने कुछ नहीं कर सकते। फिर अगले दिन केशव कश्मीरी भाग गया। तो निमाई छोटी हुई आयु में ही बड़े संस्कृत के विद्वान बन गए थे। और अद्वैताचार्य को पता था कि निमाई स्वयं भगवान है, कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। उनके मन में कोई शक नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। वो हमेशा निमाई को, चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते थे। पर चैतन्य महाप्रभु जो हैं, वो निमाई को गुरु का स्थान देते थे। चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को गुरु का स्थान देते थे। क्योंकि अद्वैताचार्य ने दीक्षा ग्रहण की थी माधवेंद्रपुरी से। तो आप कहोगे अरे अद्वैताचार्य तो महाविष्णु के अवतार हैं, तो उन्होंने गुरु क्यों ग्रहण किया? भगवान स्थापित करते हैं, दिखाते हैं क्या कि अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो हमें प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी गुरु स्वीकार किया, जिनका नाम क्या था? ईश्वरपुरी। भगवान ने भी गुरु स्वीकार किया था, जिनका नाम क्या था? संदीपनी मुनि। तो अद्वैताचार्य ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली थी। माधवेंद्रपुरी कौन थे? बहुत ऊंचे कोटि के भक्त, 24 घंटे जुड़े रहते थे भगवान के नामों के उच्चारण में। अगर किसी ने कुछ खाने को दे दिया तो खाते थे, नहीं तो भूखा रहते थे। सारा दिन भगवान के नामों का उच्चारण करते थे, शाम को थोड़ा सा दूध पीते थे बस। तो माधवेंद्रपुरी भारत की यात्रा कर रहे थे जब वो शांतिपुर में अद्वैताचार्य से मिले, और अद्वैताचार्य ने उनसे दीक्षा ग्रहण की। और चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा किसे ली थी? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी भी थे किसके शिष्य? माधवेंद्रपुरी के। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा अद्वैताचार्य को बहुत आदर देते थे, आखिर उनके गुरु के भाई थे, गुरु भाई, तो गुरु के समान। जब भी चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को मिलते थे उनको प्रणाम करते थे, और अद्वैताचार्य मन में सोचते थे ये स्वयं भगवान है, मैं उनका सेवक हूं, तो वो मुझे प्रणाम करते हैं। तो अद्वैताचार्य बहुत दुखी था इस भाव के साथ। तो अद्वैताचार्य ने सोचा कोई ऐसा विचार, ऐसा कार्य किया जाए जिसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु मुझे डांटेंगे। तो उन्होंने निर्विशेषवादी सिद्धांत का प्रचार शुरू कर दिया, तुम भगवान हो, वो भगवान है, तुम भगवान बन जाओगे। और जब उनसे पूछा जाता था भक्ति ज्यादा महान है या ज्ञान, ज्ञान भक्ति में क्या है? कुछ भी नहीं है। तो दूर दूर से जोर जोर से मायावादी सिद्धांत का उपदेश देना शुरू कर दिया। मायावादियों का क्या भाव रहता है? भगवान का रूप नहीं है, आंखें नहीं है, पैर नहीं है, कुछ नहीं है, निराकारवादी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमें इस सिद्धांत से बचना है, इससे मायावादी की संगत नहीं रखनी थी। तो अद्वैताचार्य ने बड़ी बड़ी सभा में शुरू कर दिया निर्विशेषवादी का प्रचार। महाप्रभु उस वक्त नवद्वीप में थे, अद्वैताचार्य शांतिपुर में थे। तो महाप्रभु को सूचना मिली कि अद्वैताचार्य निर्विशेषवादी प्रचार कर रहा है, कहता ज्ञान ज्यादा ऊंचा है भक्ति से। तो उन्होंने नित्यानंद से पूछा ये सच है क्या? नित्यानंद का मैंने भी यही सुना कि अद्वैताचार्य निर्विशेषवादी बन गया है, मायावादी प्रचार कर रहा है सब जगह। फिर एक और भक्त गौरीदास पंडित, उनसे भी पूछा, सब नहीं वो सब भी अद्वैताचार्य तो बिल्कुल बदल गया, पहले भक्ति का प्रचार करता था, अब कहता है माया हो निर्विशेषवादी, भगवान का रूप है ही नहीं, कहता तुम भगवान हो, मैं भगवान हूं, सब भगवान है। तो महाप्रभु बहुत गुस्से में थे। तो मंच पर बैठे हुए अद्वैताचार्य लेक्चर दे रहे थे और महाप्रभु वहां से गुजर रहे थे नित्यानंद के साथ। महाप्रभु ने देखा जैसे यहाँ इस समय मंच पर बैठकर लेक्चर हो रहा है, महाप्रभु ने देखा अद्वैताचार्य लेक्चर दे रहे हैं, तो महाप्रभु रुक गए लेक्चर सुनने के लिए। और अद्वैताचार्य ने भी देख ली कि महाप्रभु वहां खड़े हैं, तो अद्वैताचार्य ने और जोर जोर से बोलना शुरू किया, निर्विशेषवादी सिद्धांत असली सिद्धांत, तुम सब भगवान हो, भगवान के दास नहीं हो, तुम सब भगवान बन सकते हो। तो महाप्रभु ने अपने कानों से सुना, महाप्रभु इतने गुस्से हुए कि वो प्लेटफॉर्म पर आए, ऊपर अद्वैताचार्य को नीचे खींचा और मारने लगे पैरों से। वो इतने मारने लगे क्योंकि अद्वैताचार्य की सीता ने कहा ये बूढ़ा व्यक्ति है, मर जाएगा, रोको रोको रोको। और नित्यानंद जी हंसने लगे, और नित्यानंद को पता था ये अद्वैत आचार्य की भी है। तो जब महाप्रभु ने माना, फिर अद्वैत आचार्य खुशी में नाचने लगा। यही था मेरा उद्देश्य कि चैतन्य महाप्रभु मुझे डांटे। चैतन्य महाप्रभु माँ अद्वैत आचार्य को बहुत आदर दे रहे थे, जब भी मिलते थे प्रणाम करते थे, क्योंकि उनके गुरु के भाई, गुरु भाई थे। जब भी मिलते प्रणाम करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। और अद्वैत आचार्य के हृदय में क्या था, भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे डांटना चाहिए, मुझे आदेश देना चाहिए, तो यहाँ मुझे इतना आदर देते हैं। अद्वैत आचार्य ने जब भगवान उन्हें मारा और फिर सीता देवी और दूसरों ने छुड़ा दिया, तो अद्वैत आचार्य नाचने लगा खुशी में। अब मैंने अपने उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। तो फिर भगवान ने, फिर चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि ये अद्वैत आचार्य का नाटक था। उनका नाटक क्यों था, क्यों था? क्योंकि उनकी इच्छा थी कि निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु जो आदर दे रहे हैं, वो आदर उन्हें नहीं दें, क्योंकि स्वयं भगवान है। इस प्रकार अद्वैत आचार्य की कई लीलाएं हैं। सच्ची माता के हृदय में अद्वैत आचार्य के प्रति थोड़ा क्रोध रहता था। सच्ची माता के मन में क्रोध इस कारण था, उनके बड़े बेटे विश्वरूप ने घर छोड़ दिया था और छोटे बेटे ने भी घर छोड़कर सन्यास ग्रहण कर लिया था। चैतन्य महाप्रभु जी की इच्छा थी सन्यास के पश्चात वृंदावन में रहें। पर उनकी माता की इच्छा थी कि वो ज्यादा दूर नहीं रहे, इसलिए वो जगन्नाथपुरी में रहे। तो जो सच्ची माता के हृदय में थोड़ा क्रोध था किसके प्रति, तो जब अद्वैत आचार्य को कहा जाता था कि सच्ची माता के हृदय में थोड़ा क्रोध है आपके प्रति, वो कहते थे ये कैसे संभव है, तो भगवान की माता है, क्रोध कैसे हो सकता है। और जब भक्त कहते थे महाप्रभु से आपकी माता को आप आशीर्वाद क्यों नहीं देते, आप सबको आशीर्वाद दे रहे हो पर माता को आशीर्वाद नहीं दे रहे, महाप्रभु क्या कहते थे, मेरी माता ने अपराध किया है। क्या था उनका अपराध? उनका केवल ये अपराध था क्योंकि मन में कल भाव था अद्वैत आचार्य के प्रति। उनके मन में यह भाव था कि मेरे दोनों बेटे घर से गए अद्वैत आचार्य की शरारत के कारण, ये है कारण मेरे बेटों को संन्यास दिलाने के लिए। तो एक दिन सच्चो सच्ची माता को बार बार ये भक्त कहते थे कि सच्ची माता को भी कृपा दो अपनी। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने अपना रूप, दिव्य रूप प्रकट किया था शिवास आंगन में। शिवास आंगन हमारे मायापुर के मंदिर के निकट ही है, यहाँ के चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया था। और अद्वैत आचार्य आए वहां दर्शन लेने के लिए, दर्शन ले नाचते नाचते गाते गाते आए दर्शन लेने के लिए। पर जैसे वो पहुंचे और महाप्रभु का दर्शन लिया, भक्ति भाव में बेहोश होकर लेट गए, गिर गए। और फिर सच्ची माता ने तुरंत जाकर अद्वैत आचार्य के चरणों की धूल लेकर अपने माथे में लगाई। जब महाप्रभु ने देखा अब मेरी माता ने पछता लिया है उस अपराध के लिए, फिर महाप्रभु ने क्या कहा, अब मेरी माता के हृदय में भी भगवत प्रेम प्राप्त होगा। और अद्वैत आचार्य ने फिर भगवान से, महाप्रभु से निवेदन किया कि वो जो विराट रूप आपने अर्जुन को दिखाया था भगवद गीता में, वो विराट रूप का दर्शन दीजिए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने विराट रूप का दर्शन दिया किसे, अद्वैत आचार्य को। तो इस घटना द्वारा हमें ये सूचना मिलती है कि आध्यात्मिक मार्ग में हमें क्या, किस कार्य से बचना चाहिए, वैष्णवपरा से। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे थे, उन्होंने कहा ब्रह्मांड ब्रह्मिद कोनो भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भी। अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भक्ति का बीज मिलता है। भक्ति का बीज मिलता का क्या अर्थ है, भक्ति का ज्ञान, भक्ति की महिमा, भक्ति की आवश्यकता, ये ज्ञान प्राप्त होता है। पर केवल ज्ञान प्राप्त होने से काम नहीं चलेगा, ये चलेगा अब एक बीज बोलोगे उसे बीज उगेगा, बीज का भुगतता है जब आप क्या करते हो, क्या पानी पिलाते हो। तो ये भक्ति का बीज उगता है जब आप श्रवणम और कीर्तनम करते। श्रवणम कीर्तनम भगवान ने जीव दिए, जीव द्वारा उनके नामों का उच्चारण, श्रवणम करते हैं कानों से सुनना। तो यही उपदेश महाप्रभु ने कहा भक्ति का बीज उगेगा श्रवणम कीर्तनम से। पर जैसे कि आप कोठी बनाते हो तो दीवार भी बनाते हो, दीवार क्यों बनाते हो कि गलत व्यक्ति अंदर नहीं आ जाए। अमेरिका में लोग दीवार नहीं बनाते, अमेरिका में आप देखते हो कि 4-4 acre की कोठी है, बिल्कुल खुला, कोई आता नहीं अंदर। भारत में दीवार नहीं बनाओगे तो गलत व्यक्ति आ जाएंगे, तो ऊंची दीवार बनानी पड़ती है। तो इसी प्रकार महाप्रभु ने कहा कि हमें भक्तों की संगत में रहना चाहिए। पर आगे महाप्रभु ने कहा कि जिस प्रकार एक सुंदर बगीचा नष्ट हो जाता है अगर आप पागल हाथी को छोड़ो अंदर, अच्छा बगीचा है हाथी अंदर आएगा 1 मिनट में सब खराब हो जाएगा, उसी प्रकार ये भक्ति का बगीचा बिगड़ जाता है वैष्णव अपराध के द्वारा। तो इसलिए हम सबको वैष्णव अपराध से बचना है। आप चैतन्य चतुर्विधा में पढ़ते हो कि जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया शिवा संगम में, रोज 8-10 घंटे लगातार कीर्तन होता था। एक ब्राह्मण था जिसके हृदय में ईर्ष्या थी। ब्राह्मण ने कहा रोज महाप्रभु इस स्थान में जाते हैं कीर्तन करते हैं, शिवा को इतना आदर मिल रहा है, तो उनकी बेइज्जती करने के लिए उन्होंने दुर्गा जी की पूजा का सामान रख दिया उनके दरवाजे के सामने। अगले दिन जब शिवा ने दरवाजा खोला और देखा, उसने कहा पड़ोसी देखो, मैं तो दुर्गा जी का उपासक था, मैं तो तुम्हें धोखा में दे रहा था। अंत में क्या परिणाम हुआ, इस ब्राह्मण को घेरी कोड़ की बीमारी हो गई, थड़ते गया, पर अंत में शिवा ने उन्हें माफ किया। तो हमें वैष्णव जीवन में वैष्णव अपराध से बचना है। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य की अनेक लीलाएं हैं। आज के शुभ अवसर पर हम सबको अद्वैत आचार्य को प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तवा कृपा वाले पाई चैतन्य अनाताई। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अद्वैत आचार्य सीता के पति कृपा करके मेरे ऊपर दया कीजिए, आपकी कृपा के बिना मुझे नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो आप सब तैयार हो ये प्रार्थना करने के लिए, दया करो सीता पति अद्वैत गोसाई चैतन्य मिलाए, आपकी कृपा के बगैर ना नित्यानंद की कृपा मिलेगी ना चैतन्य महाप्रभु की। और ठीक अद्वैत आचार्य इस पृथ्वी पर थे 125 सालों के लिए, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए अद्वैत आचार्य की प्रार्थना की पुकार के उत्तर में, और वो अप्रकट भी हुए अद्वैत आचार्य की इच्छा के अनुसार। अद्वैत आचार्य ने देखा कि भक्ति का वातावरण बड़े फैल गया है, हर जगह लोग हरि नाम ले रहे। महाप्रभु के समय सब हरि नाम ले रहे थे। जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए, दूर दूर से लोग आ रहे थे इनके संकीर्तन आंदोलन का दर्शन प्राप्त करने के लिए। दूर दूर से लोग हरे नाम को सुनते ही जप करना शुरू कर देते थे। और जब ये व्यक्ति अपने गांव में लौटते थे, दूसरे व्यक्ति उन्हें सुनकर वो भी जप करना शुरू कर देते थे। इस प्रकार महाप्रभु के प्रचार से पूरे भारत में हरे नाम फैल गया था। और महाप्रभु की भविष्यवाणी थी क्या, पृथ्वी आज जाता मोरे नाम, विश्व के हर कोने में क्या पहुंचेगा, हरि नाम पहुंचेगा। और ये संभव हो पाया है प्रभुपाद जी के प्रयास है। तो अद्वैत आचार्य ने कहा, जब हर जगह चावल प्राप्त हो रहा है तो बाजार में चावल की जरूरत नहीं, जब धारी के हर घर में चावल है। तो महाप्रभु इससे समझ गए कि अब उनके अप्रकट होने का समय आ गया है। तो महाप्रभु प्रकट हुए अद्वैत आचार्य की इच्छा के अनुसार, और अप्रकट भी हुए अद्वैत आचार्य की इच्छा के अनुसार। और अद्वैत आचार्य इस पृथ्वी पर थे 125 सालों के लिए। तो आज है उनका जन्मदिन, और बड़ी खुशी की बात है कि इस शुभ अवसर पर ये कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। और क्योंकि अद्वैत आचार्य महाविष्णु है, इसलिए आपको जो प्रसाद आज मिला शायद एकादशी प्रसाद है, इसलिए क्योंकि आज महाविष्णु का जन्मदिन है। तो आप सब से निवेदन है मुझे कि आप गंभीरता से भक्ति को निभाए, को स्वीकार कीजिएगा, महामंत्र का जाप कीजिएगा। चैतन्य महाप्रभु ने 5 विषयों पर बल दिया, साधु संग। तो हर इतवार को इस्कॉन के मंदिर में जाओ, भक्ति वृक्ष नाम के कार्यक्रम में आओ, फिर नामा कीर्तन, हरि नाम का उच्चारण करो। आप में से कितने भक्त हो जो बकायदा हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हो, कितने भक्त हो जो कि रोज 16 माला का जाप करते हैं, और कितने भक्त हैं जो रोज बिल्कुल माला नहीं करते, सब करते हो। अच्छा, जो नहीं करते वो शायद प्रसाद खा रहे हैं, जो प्रवचन सुनने वो शर्माला करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा साधु संग, आगे क्या कहा, नामा कीर्तन, फिर आगे क्या कहा किसे बताए, भगवत का श्रवणम करो, भगवतों को पढ़ो। आप ऐसे कितने भक्त हो जिनके पास प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद की हुई भगवतम का सेट है। ओ वेरी गुड, तो भगवतम को पढ़ो। और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते क्लास सुनने, इंटरनेट द्वारा घर में सुन सकते हो। चौथा विधि क्या था, भगवान के आर्च्य विग्रह की पूजा करो श्रद्धा और आदर के साथ। और पांचवा था क्या, क्या है पांचवा, धाम में रहो। इसका मतलब है आप सबको दिल्ली छोड़कर तुरंत ही वृंदावन चले जाना चाहिए। पर आप वृंदावन जाओगे तो दिल्ली में प्रचार कौन करेगा, तो आपका दिल्ली तो एक रूप से धाम है, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ। और प्रभुपाद जी ने आपके इस शहर में बहुत समय काटा था, ये धाम बन गया है। तो आप दिल्ली में ही रहो, जहां हो वहीं रहो, पर गंभीर भक्ति का वातावरण रखो। घर में जो खाओ प्रसाद के रूप में भोग लगाओ भगवान को। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मुझे भोग लगाए बिना खाए वो क्या खा रहा है, आप पाप तो नहीं खाना चाहते, तो प्रसाद खाओ। और साधु संग में रहो, साधु संग में रहोगे तो बुरे कामों से बचोगे। ध्रुव महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मैं सदा उन्नत भक्तों की संगत में रहूं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मैं सदा आपका सेवक रहूं और आप सदा मेरे स्वामी रहो। तो ये भाव है आप में, सदा भगवान का सेवक रहना चाहते हो, और स्वामी कौन? भगवान। तो ये भाव होना चाहिए हम समय, और ये भाव आप रख सकोगे अगर आप नियमित रूप से रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। तो बोलिए सब, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अद्वैताचार्य की, अद्वैताचार्य की, अद्वैताचार्य की, गौर प्रेमानंद।
परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को सुनने के लिए धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए gkgoswami.com पर जाएं।